نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. انسان ذی شعور ہو، عقل رکھتا ہو، سمجھ رکھتا ہو تو ضرور ضرور اس میں یہ احساس ہوتا ہے، وہ چیزوں کو پہچانتا ہے. اور سب سے بڑی تمیز اس میں یہ آ جاتی ہے، سینس اللہ پیدا فرما دیتا ہے، اچھی چیز کو اور بری چیز کو پہچاننے لگتا ہے. اس کے اندر یہ چیز اللہ پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ گندی چیز کو بھی سمجھ جاتا ہے، اچھی چیز کو بھی سمجھ جاتا ہے، شعور پیدا ہو جاتا ہے اس میں. کوئی گندی چیز ہوگی وہ اس کے نزدیک بھی نہیں جاتا اور دور ہوتا ہے اس سے، اور جتنی اچھی صاف ستھری چیز ہوگی بندہ اس کو پسند فرماتا ہے، اس کے قریب آتا ہے. بعض لوگ بہت اور بھی زیادہ سینسیٹیو ہوتے اس معاملے میں کہ بھائی کوئی آدمی میرے پاس ایسا ہو، سامنے کھڑا ہو جس میں کوئی بدبو نہ آتی ہو. خاص طور پہ نماز ہے، جیسے نماز میں جماعت فرض ہے، حدیث میں ہے، یہ لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، فرض تو ادا ہو جاتا ہے لیکن نماز کا ثواب نہیں ملتا ان کو. گھر میں نماز پڑھ لی کرتا پڑھ لی تو فرض تو ادا ہو گیا لیکن ثواب جو ہے نماز کا انسان کو نہیں ملتا. نماز کا ثواب تو ایک نماز کا ثواب آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ ساری زندگی لگا دے ایک فرض کو ادا کرنے میں، وہ فرض اس کو دوبارہ نصیب نہیں ہوتا. جماعت کے لیے اللہ تعالیٰ حکم فرمایا انسان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. جماعت میں ہمیں گیدرنگ کا لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس میں ایک ساتھ، اور پھر اس میں یہ بھی حکم ہے جڑ کر ٹھہریں آپ، گندے سے گندہ ملے ہیں، سنتے ہیں نا، ساتھ بیٹھے. تو وہاں تو یہ ہے کہ اب آدمی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس میں بو آ رہی ہو، سوکھ سے بو آ رہی ہو، جسم سے بو آ رہی ہو، منہ سے بو آ رہی ہو، سات آج آدمی وسیعت تو کہیں پہنچے گی نہیں پہنچے گی، ضرور پہنچے گی. تو سنت اللہ کے نبی مجھے کیا بتائے کہ بھائی جب آپ جائیں نماز کے لیے جائیں، قرآن کے پرکوم ہے، تو اس وقت بالخصوص صفائی کا اہتمام کریں. کچھ تو لازمی کر دی گئی ہیں، مسواک کریں، منہ سے بھونا ہے، ہاتھ اچھی طرح دھوئیں، پاؤں اچھی طرح دھوئیں، پاؤں سے بھونا ہے، کسی قسم کے صاف. تو اس میں ایک یہ بھی نقطہ ہے کہ کیونکہ ہم نے اب اکیلے نہیں ہونا بلکہ لوگوں کے مجموعے میں شامل ہونا ہے، جب اس مجموعے میں شامل ہونا ہے تو ہماری پڑوسی کسی کو دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. اور خاص طور پہ چیزیں حلال ہیں، کھا سکتے ہیں آپ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا ہے کہ کیونکہ اس میں بو ہوتی ہے، بعض لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. جیسے پیاز ہے، کچا پیاز کھاتے ہیں تو لہسن کھاتے ہیں تو اس کو بو ہوتی ہے، اس میں جب انسان کھا لیتا ہے تو اس کے منہ سے وہ بو نکلتی ہے. تو ساتھ والا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ پتہ نہیں کتنا سینسٹیو ہے، اس کی ساری نماز ضائع ہو جاتی ہے. بس یہ بات ہے، وہ نماز پہ کنسنٹریشن نہیں رہتی آدمی کی. میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے آدمی. تو ایسی چیز کیا، کوئی ایسے ہی ادھر لگا ساتھ کھڑا ہو جائے جو چیپ قسم کا ہوتا ہے، جو لگتے ہی آدمی کے نا چھینکیں شروع کر دیتا دوسرے کی بھی، تو ہر طرح تو صحیح نہیں نا ہوتا. اس سے کیا ہوتا ہے پھر کہ دوسرے کی نماز جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، بوجھ ہوئی. تو لہسن میں منع کیا گیا ہے، پیاز کا بھی منع کیا ہے، کھا کے کچی پیاز لہسن یا ایسی چیزیں جس میں منہ سے بو آئے یا کوئی چیز ایسی خالی ہے تو آپ اس کو کلی کریں، واش کریں، اس طرح منہ کو داتن کریں، صاف کریں اس کو، اور صاف کرنے کے بعد پھر آپ جائیں تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو اس سے. खुशबू लगाए, खुशबू लगाना सुन्नत है, तो खुशबू अच्छी लगाए जिससे दूसरे भी खुश हो कि भाई दुआएं निकलती को अच्छा खुशबू वाला आ जाए ना आदमी, वाकई मत अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, तो बोल के दिल करता है अगली दफा इसके साथ मुझे जगह मिले। तो संसागत याद ये बुरी चीज है, ये अच्छी चीज है, बुरी खुशबू है, अच्छी खुशबू है। लेकिन ये भी अजीब बात है, देखिए कि सबसे गंदी बदबू है जो पखाना होता है पेशाब, लेकिन आप देखें कि माँ जो है बच्ची की नेपी जो बदलती है उसको बदबू नहीं आती। आप नहीं ठहर सकेंगे, बल्कि बाद औरतें क्या करती हैं वो देखने के लिए कि बच्चे ने इसकी नेपी खराब तो नहीं होगी, बल्कि सूंघती हैं उसको। आप सोचें एकदम ट्रेंड चेंज हो गया, एक वो इतने खराब है इंसान की बात खराब करते हैं, अल्लाह ने कानून बना दिया है पाक सब कुछ है, लेकिन वो एक माँ है, माँ उस बदबू को जो है वो सूंघ रही है, पेशाब खाता हुआ देखती है, देखे ना आप, हाँ वो भी पखाना है बदबू है सारी जिस बदल गई। वजह क्या हुआ कि वो पता चीज रही है कि वो इस कदर फना होगी उसकी मोहब्बत के अंदर कि उसकी वो भी वो नजर नहीं आती उसको। माँ को इतनी मोहब्बत है, अभी इंतहा है ना मोहब्बत की, इंसान कोई नहीं ठहर सकता, बखाना बखाना है, गंदगी गंदगी है, लेकिन क्या वो सुनती है उसको, शुरू करती है माइंड करते। मुझे बड़ा खतरा होता है जिस घर छोटे बच्चे हो ना तो उनके हथियार से खाए जाए, पत्नी हाथ मोहब्बत में वो तो नहीं खा लेते तो हाथ धोती भी सही नहीं होती। मजाक में कहता हूँ कोई छोटा बच्चा तो नहीं इनके घर में, वजह क्या है एकदम क्या होता है इंसान, ये है मोहब्बत इंसान की, सबसे जो गंदी चीज है ना बदबू तुम्हें बताया अल्लाह ने मना किया, लेकिन वो इतनी उसको अजीज रहती है कि उसकी वो उसकी वो उसकी वो नजर नहीं आती, मोहब्बत है मोहब्बत बढ़ जाती। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला कहा कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजीब हदीस से देखेंगे, और अल्लाह के नबी ने कहा तो कसम खा के आगे कसम उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ये कसम खा के बात की है, अजीब देखें बताए हम आते हैं कि खल्फु फहमसाहिन इंदुल्लाह रिहर मस्क, बता दें कि ये जो है बदबू है बदबू ही। अब देखें क्या चीज है बदबू है, कहां से आ रही है कि जो साइम होता है ना रोजेदार, जैसे हम रोजेदार है ना तो जहर रोजा निकल जाता है तो आदमी से एक बो आने लगती है, मुंह से एक बो आती है, वो क्या होती है गैस्ट्रिक बनती है इंसान के पेट में, वो फिर जहर निकलता है जो खाए पिए होता है, तो पानी छानी भी नहीं पिया होता, पेशाब मुंह भी साफ कर लें, इसको कहते हैं स्टमक की बो होती है, ये मुंह से ताल्लुक नहीं होता इसका कि भाई मुंह साफ नहीं, मुंह साफ ही होता है, लेकिन स्टमक से एक बो निकलती है इंसान की, जब आप बात करते हैं उसके मुंह में आप महसूस करेंगे आ रही है, रोजदार की आती है बदबू आती है, तो शहर की बदबू तो बदबू है, फिर दिल करते आदमी कोई चलो कपड़ा शर्फ या दूर होके बात करे उससे, बदबू तो बदबू होती है ना, लेकिन वो रोजगार को थोड़ी पता होता है बेचारे का कि मेरे मुंह से बदबू आ रही है दूसरे को तकलीफ हो रही है। अब अंदाजा अल्लाह कसम खा के आते हैं कसम उस जात की जिसके हाथ में जान है। अब वो फरमाते कि अल्लाह सुभान ताला को रोजगार जो है जिसने रोजा रखा हुआ है उसकी जो मुंह की वो है खल्फों पर सवाल फरमाया कि जो उसके मुंह की बू है इंदल्ला अल्लाह सुबहाना ताला को रिहन मस्क या जो मस्क है उससे भी ज्यादा महबूब नजर आती है उसको। वो ही है, लेकिन रब क्या है कि हमें तो वो बुरी लग रही है, वो बुरी लगनी चाहिए, शोर है, लेकिन अल्लाह सुबहाना ताला को रोजदार जो होता है उसके जो मुंह से वो निकल रही होती है, गंदी जो वो होती है, सब पसंद नहीं बल्कि मिसाल दी है, मिसाल दी है किस चीज की, मस्क। अब यहां सुन रहे कि कई किस्में हैं खुशबुओं की, लेकिन सबसे जो अच्छी खुशबू कहा जाता है इसको मस्क है। और अरबों में ये खास तौर पे बहुत ही मशहूर है, और है भी बहुत अच्छी मस्क की खुशबू, अगर अच्छी मिल जाए सुभानअल्लाह तो गए देखें दूसरे भी मजा आएगा, जिसको जो आप सब नमाज में खड़ा होगा 50 पाउंड खर्च कर दें सिर्फ इसलिए कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी की नमाज को सवाब पहुंचाऊंगा, ये सुनत भी अदा करें। इस सारे नेकी बहुत बड़ी नेकी है, खासतौर पर रमजान के अंदर ये काम करें आप, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खुशबू साथ रहा है। मस्क जो है जिसके अल्लाह में साथ दे रहे हैं, पता चलता है इससे अच्छी कोई खुशबू नहीं है, क्योंकि जो अल्लाह को चीज पसंद है उससे बेहतरीन कोई खुशबू हो नहीं सकती थी, उससे बड़ी किसी की च्वाइस हो नहीं सकती। तो पता ही चलता है कि मस्क जो है बहुत खूबसूरत खुशबू है, निश्चय खुशबू है। अल्लाह ताला कहता है कि इस खुशबू से भी ज्यादा मुझे ज्यादा क्या पसंद है, बदबू। सुभानअल्लाह, और किसकी, हर एक की नहीं जिसने रोजा रखा हो। बात समझ आई कुछ, माँ की क्यों पसंद है, वो पखाना जो सूंघती है वो, उसको तो कुछ बदबू आती नहीं, इसीलिए कि उसको अपने बच्चे से इतना प्यार है कि वो बदल गई है खुशबू में। तो जिस वक्त इंसान रोजा रखता है तो अल्लाह सुबहाना ताला वो बंदा इतना प्यारा हो जाता है, इतना प्यारा महबूब हो जाता है कि उसकी वो फिर वो नहीं रहती अल्लाह के नजदीक। नहीं समझे बात, क्या बताया शाह अल्लाह क्या दिया कि इंसान सारे बराबर हैं अल्लाह के नजदीक, गोरे काले चिट्टे बुरे बदसूरत खूबसूरत से तो हमारा स्टैंडर्ड है ना। अल्लाह कहते हैं मैंने तो बेहतरीन तरीके से इंसान को पैदा किया, काले रंग का उसमें खूबसूरती है, जिसकी नाक चपटी उसमें खूबसूरती है, क्यों बसूरत है ही नहीं इंसान, क्यों अल्लाह कहते हैं मैंने पैदा किया और अपनी पसंद से पैदा किया, जैसे मैंने चाहा वैसे पैदा किया। अगर तू किसी को बसूरत देख रहा है तो अपनी आंखों का इलाज करो, तेरा इलाज चाहिए, वो बसूरत नहीं है। तू अब बहुत अपने आप को हसीन खूबसूरत समझता है, बुराई निकालता है, तू ऐसा है और तू फला है, तेरा जिस्म ऐसा है, तू फला ये करते है, तू फला थी। पहले से दिमाग में साफ करो कि अल्लाह ने जिस चीज को पैदा किया है वो तो है ही हसीन, क्योंकि उसने अपनी पसंद से पैदा किया है, कुरान ने अल्लाह ने कहा है। तो आप उसको कैसे बसूरत, पता चलता है कि तू अपने आंखों का इलाज करा, तेरी आंखें खराब है, दूसरी को बुरा ना, बुरा ना समझे। तो अल्लाह के नजदीक तो सारे बंदे काले गोरे चिट्टे पीले चाइनी जापानी सारे अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह को बहुत महबूब है, लेकिन बंदे की हैसियत से। लेकिन महबूब अल्लाह उसी बंदे को बनाता है, उस बंदे को बनाता है कि जो बंदा उस मियार पे पहुंच जाता है, वो क्या मियार अल्लाह ताला का रोजा है। मियार कौन सा बताया, रोजे की मिसाल दी कि जब बंदा मेरे लिए रोजा रख देता है वो क्या रोजा है, जो रोजे का असल मफहूम है, जो रोजे का असल मफहूम है कि अल्लाह अब मैं वही करूंगा जो तू चाहेगा, ये कंटेक्ट होता है हमारा रोजे से, कि अब मेरा कदम मेरी सांस मेरा हाथ मेरा जिस्म मेरी निगाह मेरी कान हर चीज वो ही होगा शाम तक जब तक रोजा है, तो मैं वही काम करूंगा जो तेरी पसंद का काम होगा। जिसने ये काम मुकम्मल तौर पर कर लिया उसको कहा जाता है रोजगार, ये है रोजा रखने वाला। बाकी तो फिर सब ड्रामे, ये इससे रोजा रखा था, पराठे खाए थे, अंडे खाए थे, यम नहीं किया, फलां किया, ये बातें थी कि नहीं। असल ये है कि जिसने मेरा हुक्म के मुताबिक इस वक्त को गुजार लिया, जिस वक्त मैंने हुक्म दिया है, तो फिर वो बंदा जो है मेरा रोजगार है। इसलिए वो अल्लाह को महबूब हो गया कि उसने अपनी जिंदगी को चंद घंटों के लिए अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, सबमिट कर दिया। वैसे समझिए आप, तो उस चंद घंटों के अंदर उसके जो अयूब थे, उसमें जो बुराई थी, अल्लाह ने उसको फॉरगेट कर दिया। बल्कि अल्लाह कहता है अब मैं इसकी परवाह नहीं करता हूं, अब ये मुझे इतना महबूब हो गया कि मैं इसकी हर चीज को पसंद कर रहा
हूं। अल्लाह
गेट मैसेज दोस्त, मकसद मत को बड़ी कीमती चीज है, इंसान कभी कबर में इस चीज का पता चलेगा। हर चीज को एक रूटीन ना बनाए, इसका मकसद जरूर समझे। हम अल्लाह ने हमें जहन दिए हैं, समझदार आदमी है, जहीन आदमी है, हमें जरूर से उसके पीछे चलना चाहिए। मकसद क्या है? तो एक इतने से रोजा रखने के बाद अल्लाह सुबहाना तला ने उसकी बदबू को कबूल कर लिया, खत्म है ही नहीं बदबू, सुबहान अल्लाह। बल्कि ये तो मुश्क से भी बेहतर है, क्योंकि अब ये वो इंसान नहीं है जिसके अंदर से वो आ रही है, वो तब्दील हो गई है मुश्क के अंदर, हजारों खुशबू से ज्यादा इंसान जो मेरे नजदीक आ चुका है। अब कोई भी है, काला है, गोरा है, किसी रंग का है, किसी जबान का है, किसी शक्ल का है, वो कितना गुनाहगार था, लेकिन सुबह से कॉन्टेक्ट कर लिया अल्लाह ताला से। आप सोचें कि अगर इंसान को अल्लाह सुबहाना ताला जिंदगी का ये कॉन्टेक्ट कर ले, कितनी जिंदगी हमारी कितनी है, बहुत थोड़ी, या तो लहू लहम में गुजार दें वक्त के साथ साथ, अब ये कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, फलां, वक्त तो गुजरता जाता है, स्टॉप नहीं होता। आज हमें दुनिया कितने काम किए, स्टॉप नहीं रुके, लेकिन वक्त कीमती वही कीमती होगा जो अल्लाह के लिए होगा। अल्लाह के लिए मुराद क्या है? अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होगा, हमारी मर्जी नहीं चलेगी। हमें पसंद है या नहीं, हम उसको लाइक करते हैं या नहीं, हमें सोचने नहीं है। हजारों हमारी पसंद कुर्बान अल्लाह की एक पसंद पर, हजारों पसंद, हजारों कीमती खाने से हमारे सामने आप रख दें, कमजोर से कमजोर जो कमजोरी है आपकी खाने के अंदर, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ, आप सामने रख दें, आप एक लाख रुपया रख दें, पौंड रख दें, और वो आपकी रोजी को खरीदना चाहे उससे, आपने खरीद देंगे उसको, क्योंकि आपने अपनी मर्जी को ताबे कर दिया अल्लाह ताला के। तो उसके इनाम अल्लाह ने फर्म बताया, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी को सौदा कर देता है अल्लाह के साथ, जो कि कुछ भी नहीं कि अल्लाह ताला मैं तेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा, मैंने दुनिया क्या खुश करना है, ये दुनिया तो खुश होती ही नहीं है। आप याद कहें कि दुनिया कभी खुश होती नहीं, ऐसे मुकाम पे थप्पड़ पड़ता है ऐसे दुनियादार लोगों का, तो सारी जिंदगी अपने पीछे लगाते हैं लोगों को, औलादों के लिए, इसके लिए, फलां के लिए, वही औलाद ऐसे मौके पे थप्पड़ मारती है कि आदमी के चीखे निकल जाते हैं। मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ, सारी जिंदगी लगाई थी, बातें छोड़ी हैं, नमाजें छोड़ी हैं, तहज्जुद छोड़ी हैं, तलावी छोड़ी हैं, बच्चों के लिए मोहब्बत के अंदर इंसान नहीं, ऐसे मुकाम पे आके थप्पड़ पड़ता है ना, उसको अल्लाह सजा देता है, और फिर उठाने वाला कोई नहीं होता, उसको उठाने वाला कोई नहीं होता सख्त उसको। अब इंसान इस थोड़ी सी जिंदगी के लिए कॉन्टेक्ट कर ले, और पूरा आप कहते हैं ना हमारी जिंदगी का, हमारा आधे से ज्यादा क्या पूरी जिंदगी का हिस्सा हमारा हमारे लिए नहीं होता, औलादों के लिए होता है। बेईमानी औलादों के लिए करते हैं, फ्रॉड औलादों के लिए करते हैं, मकान औलादों के लिए करते हैं, हर चीज से पहले मकसद ये होगा औलाद, क्योंकि एक मोहब्बत डाल दिया अल्लाह ताला कहता है जाहिल दीन आम अजवाज हूँ औलाद हूँ अदब लखूँ, ये तो तुम्हारे दुश्मन है, ये तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें तुम्हें एहसास ही होने देते कि तू पैदा क्यों हुआ, तेरा मकसद क्या है जिंदगी का, वरना तेरा मुकाम इतना बुलंद है कि चंद घंटे तूने मेरी मर्जी के मुताबिक काम किया, तो अल्लाह के नबी कसम खा कहते हैं कि अल्लाह सुभान तआला किसकी बदबू इतनी महबूब होगी इस शख्स की। तो अगर तू जिंदगी ऐसे गुजार दे कि जो टेस्ट दिए गए कि औलाद की शक्ल में कभी किसी की शक्ल में जो हक ला दे उस हक तक रख, दीन को कुर्बान ना करो, वरना ऐसी जगह पे अल्लाह सुभान तआला, मैं हकीकत बता रहा हूं आप, ऐसी जगह पे उसको थप्पड़ पड़ता है कि जहां पे संभलने वाला संभालने वाला कोई नहीं होता उसको, लेकिन फिर बहुत देर हो चुकी होती है, बहुत देर हो चुकी होती है, पहले से भी आदमी अपने आप प्लान ऐसे करे जहां तक हाथ लिमिट है, जहां तक अल्लाह ने जाने दिया है वहां तक जाए। इसको कहते हैं दीन एतदाल शिक्षा शर्म, ये मैसेज है कुरान के दे कि तू इतनी कीमती चीज है कि अल्लाह तो तेरी हर चीज को पसंद करने लगेगा, और जिसकी अल्लाह ताला से ये मोहब्बत हो जाए इस दर्जे की, मुझे बताए तो उसका मुकाम क्या हुआ आदमी की, उसका मुकाम इसी हदीस में आ रहा है, बता रहा था कि मछलियां जो होती हैं जो ऐसा रोजा रखने वाला होता है ना जिसको मैं महबूब कर लेता हूं, यदि सुना रहा हूं आप कि जिसको मैं महबूब कर लेता हूं कि उसकी बदबू मैं पसंद कर रहा हूं मश्क से ज्यादा, तो सबसे आला दर्जा खुशबू है मुझे महबूब, मैं सीने से लगाता हूं सूंघता हूं उसको, बोल मैं सूंघा दुनिया वाले सूंघ मैं सूंघता हूं सुबह, तो इतने आला दर्जे का हो जाता है कि जो कायनात के अंदर सबसे पोशीदा चीज है, अब हदीस है कायनात के अंदर आलमीन है ना बहुत से परिंदों के हैं सबके परिंदों नजर है, लेकिन जो पोशीदा चीज एक बहुत बड़ी दुनिया ओशन जिसको कहा जाता है, बाकायदे हमने जब मैं पढ़ रहा था मास्टर डिग्री कर रहा था इसमें जियोलॉजी में, तो मैं ओशन पढ़ाई गई थी ना, तो आज मुझे याद आती सुभान अल्लाह, वो तो हमारी रिसर्च थी कि ओशन एक दुनिया है पूरा, मुझे याद आ रहा है पढ़ी बातें, दुनिया एक दुनिया ओशन से पूरा एक सब्जेक्ट था हमारा, पूरा सब्जेक्ट था पर्चा था इम्तहान का, तो अल्लाह सुब्हान मिसाल दी है, अब अंदाजा लगाए कि वो ऐसे आलम जिसको तुम नहीं जानते उस आलम के अंदर वो आलम उसको पहचानने लगता है, जिसने सिर्फ चंद घंटे अल्लाह से वादा ये किया था कि तेरी वो रोजा रखने वाला जिसने कहा था कि तेरी मर्जी के मुताबिक चलूंगा, और उसने चंद घंटे वैसे गुजारे, रोजेदार वही होता है बाकी तो मेरे जैसे होते हैं खाने पीने वाले खजूर पानी पे चलने वाले लोग हैं, जो असल रोजे वाली बात था ये कीमत है उसकी जिसने सही नीयत कर ली सुबह, तो फिर वो इतना कीमती बनता है, कहते जो आलम छुपा हुआ है सबसे ज्यादा ओशन के अंदर छुपी हुई चीज है मछलियां, मछलियों के कितनी अकसाम है काउंट इट, जितने आप लोगों के अकसाम नहीं पहचान सकते ना, तो इसी तरह वो भी एक आलम है, अल्लाह ने इतनी मछलियां बताई हैं अजीब अजीब किस्म की मछलियां, सारी जिंदगी आप रिसर्च कर सकेंगे आप मछली को नहीं पहचान सकते, तो फरमाया उस ओशन के अंदर वो मछलियां, आदमी ऊपर है क्योंकि रब ने उसको महबूब बना लिया है, तो ओशन के अंदर जो मछलियां हैं वो उसके लिए शांति नहीं उसके लिए दुआएं कर रही हैं उसकी मकफरत, बताओ वो दुनिया पे अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वाले लोगों होश संभाले, कितनी कीमती चीज है इंसान, अब्दुल बिन मालिक दिनार की मैंने आपको मिसाल नहीं दी, फकीर आदमी थे लेकिन कॉन्टेक्ट था अल्लाह के साथ कि वो ही करूंगा तो तेरी मर्जी होगी, वो चेंज होकर आए थे अपने आप को तब्दील किया था, तू भी अल्लाह तो उतर नसू हवाला कर, आज रमजान है तौबा कर लो, इतने कीमती इंसान बन जाओगे, खुदा की कसम खा के कहता हूं ये शैतान का धोखा है, जब इंसान अच्छा इंसान बन जाता है, उसको कोई भी दुनिया की चीज, कोई भी दुनिया में नुकसान नहीं होता, वो भूखा नहीं मरता, उसके कारोबार में कमी नहीं आएगी। अल्लाह आपको गारंटी दे रहा है कि जब इतना मैं तुझे बुलंद कर दूंगा बेवकूफ, मस्जिद तक तुझे पहचानेंगी, तेरे पास उड़ उड़ के खुराक आएगी जो मैं देना चाहूंगा तुझे। तू क्यों डरता है तब्दीली से अपने? नहीं समझे मेरी बात? क्यों डरता है तब्दीली से? क्यों मरता है दुनिया के ऊपर? फना किया है अपने औलादों पे, इधर उधर सब कीमती चीजें छोड़ देते हैं इंसान आखिरत की। मजी फना मेरा पुत्र, मेरा माँ, मेरी ती पे, वो कहते दुश्मन है, यह वालों को उड़ा देखो, दो बोला ये तेरे दुश्मन है, तुझसे ये काम छुड़ा रहे हैं, तुझसे रोजा छुड़ा रहे हैं, तुझसे तरावी छुड़ा रहे हैं, जिक्र छुड़ा रहे हैं, नमाज छुड़ा रहे हैं, तलावतें छुड़ा रहे हैं, ये तेरे दोस्त हैं, देंगे क्या? थप्पड़ देंगे आखिर, थोड़े दिनों में देखना तमाशा चेंज होते देखते हैं, आप हैरान होते हैं कि चेंज कैसे होते हैं लोग, सजाएं देते हैं अल्लाह ताला, सजा देते हैं अल्लाह को दे रहा है क्या? आज तू और तब्दील होते तो तेरी कीमत इतनी है कि वो मखलूक तेरे लिए दुआ कर रही है, क्यों ना करे? जिसको अल्लाह महबूब बना लेता है, हमारे तो क्यों करे जो कारोबार, बच्चे आस्ते ये क्यों कर रहे, बच्चे आस्ते वो क्यों, बच्चे आस्ते बच्चे आस्ते बच्चे, वो खत्म ही नहीं होती स्टोरी हमारी, स्टोरी खत्म नहीं होती, जिंदगी गुजर जाती है सब बस ये इसी एक स्पीड चलती रहती है हमारी। और तुमने अपने साथ अल्लाह के साथ ताल्लुक बना तो जिसने बच्चे दिए उनको भी वो पास देगा तेरे, तो तेरे लिए मशीन दुआएं कर सकती है, ऐसी ऐसी मशीनें जिसको तू खा रहा है सामान, ये पता है पांच दफा तो होता है वो मस्जिद तेरे लिए दुआ कर रही थी, तफाक से तेरे दस्तखान पे आ जाती है तेरे सामने, तू खरीदने गया वो कहती मैंने तेरे लिए दुआ की थी, अब मैं बड़ी खुश हूं कि तेरे अंदर जा रही हूं लोग मां बनकर। आप छोटी चीज हैं, अल्लाह की कसम बर्बाद इसीलिए है कि हमने अल्लाह सुबहाना ताला को लिफ्ट ही नहीं करा, अपनी निगाह से देखते हैं अल्लाह को, अल्लाह को उस निगाह से देखो जिस निगाह से अल्लाह ने हमें पैदा किया है। बड़ा प्यारा जुमला है ये, अपने आप को उस निगाह से देखो जिस लिए अल्लाह पैदा किया है तुम्हें, ये मेरा बंदा है, कितना फख्र किया था तमाम फरिश्तों पे, कमा आलीन पे, कम दुनिया पे, ये देखेंगे मेरी मखलूक जाएगी नीचे जाएगी, ये मेरी इबादत करेगी, कोई चीज रोक नहीं सकेगी, बब्बी भी दूंगा बच्चे भी दूंगा, वो क्या हो गया तुम्हें? किस मोहब्बतों के साथ तुम अल्लाह को पालो? कुछ भी नहीं, नहीं समझे बात? जिसको समझ आ रही हाथ तो खड़ा कर, समझ नहीं आ रही बात है, माशा करना कराना बात की बात तो समझ तो रहे हो ना, माशा ठीक शुक्रिया। तो अल्लाह के साथ सब एक ताल्लुक इतना रखने के बाद अल्लाह ताला तेरे हर चीज में पसंद हो गई, मशीन तेरी जो है वो अंदर से दुआएं कर रही है तेरे लिए, मकफूज है। क्या काम किया उसने? बस एक वादा किया तेरी मर्जी के साथ मैं तेरे गुजारा, ये इसमें तो कितना बड़ा फायदा है, प्रोटेक्शन कितनी बड़ी है कि जब इतना बड़ा अल्लाह हिफाजत करना कह रहा है चल तू जा, मैं तेरा माफिस में जा, चला कम काम, फिर डरे आदमी वो क्या डरना करना मेरे पीछे, मालिक भी गुना तो किश्ती में बैठ गए, उसने पैसे कहते पैसे तो कोई नहीं पहचाने पहुंचा दे, वो झगड़ा करने लगा, उसने बदतमीजी की तो अल्लाह पसंद नहीं करता कि मेरे किसी दोस्त के साथ बदतमीजी की जाए, उसने कुरान में कहा मैं जंग के लिए भी तैयार हो जाए, खबरदार जो मेरे दोस्त के साथ तूने बदतमीजी की, उसने अपने आप को छुपाया वो तो छुपे मेरे दोस्त को, बदतमीजी की तो मैं सामने आ जाऊंगा, सुभान अल्लाह देखिए कितनी बड़ी बात की, अगर मेरे किसी दोस्त का तूने बदतमीज सोची भी दिमाग में तो मैं रब हूं, मैं सोच को पकड़ता हूं, प्रतिया मैं आ रहा हूं फिर, क्योंकि हर दोस्त रखने वाला अपने दोस्त की मदद करता है, नहीं करता। आपका कोई दोस्त हो और पक्का यार हो, उसके टायर पंचर हो, आप रुकेंगे नहीं रुकेंगे? पूछें की हो गया यार, मैं कोई कम कहा तेरा, वो छड़ मैं तेरा पंचर ला दूं, करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। तो फिर जिसका दोस्त अल्लाह हो, होते हैं छोड़ते हैं वो, फिर छेड़े मेरे दोस्त को, तू वो चीज है मस्त फिर रहा है उसके पास, तुमसे कुछ कहता है वो, तो उसने तड़ी दी तुम ठीक है, तो मुझे दरिया फेंकेगा। इसी बात पर अल्लाह का हुक्म दिया मछली को, सारी मछली जो वो तो पहले दुआएं करती थी बताया ना, तो एकदम हर मछली के मुंह के अंदर वही रियाल था जो वो मांग रहा था। मुझे ले ले जो ले रहे तो पसंद करना अपने हाथ से, वो तो वहीं खत्म हो गया ना। ये क्या हुआ? उसके बाद कहते जिस चीज तू मुझे फेंक रहा था उतर गए, वो दरिया पे चलना शुरू हो गया, दरिया भी उसको पहचानता है। मैं अल्लाह वाले की बात तो बहुत बड़ी ऊंची बात है, मैं अपना गुनाहगार इंसान हूं, तो गया अच्छी जगह पर था, तो अच्छी भी जगह पर जिससे आप सामने हमने रोजा रोजा रखा हुआ है, तो सबका ये मुकाम है ना इस वक्त, तो इसलिए मैं बुजुर्गी नहीं बता रहा अपने, मैं तो क्योंकि मैं मदीना गया हुआ था, मदीना जगह ऐसी है कि आदमी तो कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, उस वक्त तो नेक होते हैं ना हर आदमी, ये नहीं होता, इसलिए बता रहा हूँ नेक शेख बुजुर्ग तो कोई नहीं हो अल्लाह वाला। तो मुझे कमरा मिला, मैंने किराए पर लिया कमरा, तो कमरा ऐसा मिला कि वो कबूतर थे, वहाँ होता है ऐसे जैसे आपने एसी होता ना लगाया हुआ, उसके अंदर घोंसला बना लेते हैं कबूतर, तो वो कबूतर ने घोंसले बनाए हुए थे अंदर, तो वो आते थे वो ठुर 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 बातें गपशपत मारते थे अपनी चूचियों और ये वो। अब मैं थका हुआ बुरा हाल मेरा, मैं सिर्फ आधा घंटा इस रात के जाना, तो अब बताओ क्या। पर एक बड़ी तकलीफ हुई, मैं कहते यार नींद ही नहीं पूरी करने देते। फिर मैं क्या, मैं तो मदीना आया हूँ, सरकार का मेहमान हूँ, इस वक्त मेरा कॉन्टेक्ट हुआ है, और कॉन्टेक्ट जब रखा हो तो वो तो इंसान बड़ा कीमती हो जाता है। मैं कहा मैं क्यों ना यूज करूँ उस अथॉरिटी को अपनी। मैंने उसे कहा बिल्कुल सही बता रहा हूँ बाबा, मैं कहो कबूतर हो तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं नबी का मेहमान हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम मेरी बात में खलत कर रहे हो, और तुम्हें कोई और जगह नहीं मिलती, तुम आगे मुझे डिस्टर्ब करते हो। ठीक है, मैं कहा मैं सलाम पर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात करता हूँ नबी। यकीन करें सन्नाटा हो गया, जैसे कोई है ही नहीं उसमें। वैसे मैं भी डर गया, कितनी जल्दी एक्शन हो गए, तो चुप। और जितने दिन में वाला आठ दस दिन सवाल ही पैदा होता किसी कबूतर की आवाज आई, और आप ताजुब करेंगे जिस दिन मैंने जाना था, मैं सामान पैक कर रहा था, उन्होंने फिर माना शुरू कर दीजिए, वो शायद अलविदा कर रहे थे कि हम गए नहीं यही है। हजरत साहब के बारे में एक वाकया बड़ा अजीब है, वो ठहरते थे, वो फाइव स्टार होटल में थोड़ी ठहरते हैं फकीर, मतलब कुछ जमीन पे ठहरता था, अल्लाह के घर में जाना हुआ नखरे थोड़ी होते हैं, फाइव स्टार हो ये हो फलो। मैं जिंदगी में जब तक साल मैंने कभी किसी होटल की सिगल नहीं देखी थी, वैसे बता रहा हूँ, जमीन होती थी एक चादर होती थी, ऐसे उठ के सो जाते थे सारे, उम्र हज मैंने ऐसे ही किए थे सारे, तो बाद में कुछ छोड़ा हुआ था मामला थोड़ा सा, मुझे तो पता ही नहीं था होटल होता क्या फाइव स्टार थ्री स्टार, नेवर एवर इन माई लाइफ। तो हमारे शेख जो थे वो भी मदीने में नबर में थे, तो वो किसी बंगाली के होते हैं, वो कच्चे कच्चे मकान से बने होते हैं, मैं खुद बिठा रहा हूँ, वो बंगाली होते हैं ना, वो कच्चे कोठरी होती हैं गंद, उसमें कोई कोठा डाल देते हैं, आप ले दो रियाल दें उसमें गुजार दें उस तरह से, तो वो इसलिए जाते हैं आदमी चलो सामान सामान रख दिया आदमी, बड़ा लुत्फ आता था उस जमाने। हजरत का वो कमरा था बेचारे, तो मुझे गया उसको बेड को साफ करने, जैसे उसने बेड दिया इतने मदीने के बिच्छू बहुत जबरदस्त है, कहान के बाद मर जाते हैं, इतने बड़े बड़े बिच्छू मिस्त्री के नीचे सोते थे, तो वो तो सची को पीछे हटा खैर वो आया था हजरत हसरत साहब जी सराई को क्या है ठू कहते हैं सराई के सब उतनी सुन ले कि सब आप इसी बिस्तर पे सोते हैं, कहते हाँ बाबू इसी भी सोता हूँ, तो मैं थी आज की यहाँ सफाई मैं तो वहां देखा तो तीन चार इतने बड़े बड़े बिच्छू थे आप पूछते कि नीचे क्या बात की सर, हाँ बाबा اسا نبی دے مہمان ہوں، کہتا میں نبی کا مہمان ہوں، ہمیں یہ کچھ نہیں کرتے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
میرے بھائیو، اب اس میں دو گے، اس میں چھپنے کی بات ہے. ایک دیکھیں، ابھی حدیث سنا رہا ہوں، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ تن گھنٹے کا تو نے کانٹیکٹ کیا ہے، تو اتنا محبوب ہو گیا، ہزاروں مائیوں سے زیادہ محبوب ہو گیا. ایک مثال دے دی، سمندر کے اندر مچھلی تیری دعا کر رہی ہیں. وہ لوگ جو اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیتے ہیں، وہ تو ایسے ہی رہتے ہیں زندگی کے اندر ہمیشہ. بننا ہے بھائی، ہاں یہ تو دعوت دے رہے، کیوں گھبراتے؟ راضی کرنا ہے، گھبراؤ نہیں کہ ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو یہ چھوٹ دے گا، یہ چھوٹ دے گا. ہوگی تو دیکھو، کچھ نہیں چھوٹے گا. کر لو رمضان میں وعدہ اللہ سے، پکا سودا کر لو کہ اللہ جئیں گے تو تیری مرضی کے مطابق ہی جئیں گے. ہر چیز کرنے سے پوچھے، تیرے سے پوچھوں گا اللہ، جائز ہے، ٹھیک ہے، کر لوں ایسے. اور جو چیز نہیں سمجھ آئے گا تو کسی کو دوست رکھوں گا، اللہ والے کو پوچھ لوں گا.
اللہ
نے خود کہا اصل اہل ذکر، تو نہیں جانتا تو کسی ذکر والے سے پوچھ، وہ تجھے راستہ بتا دے گا. تو پھر تو بالکل نہیں بھٹکے گا. لیکن اس کی بات تو سننا نا، پھر یہ بات ہی نہ سننا، پھر فائدہ کیا؟ چلنا اپنا، پکڑنا آدمی، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ؟ تو اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک اس رمضان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ویسے سمجھیں گے نا، اتنا اچھا آدمی بنے، اتنی قیمتی بن جائیں کہ چند گھنٹوں میں اتنے مقام اللہ نے دے دیا. یہ تھوڑی ایک زندگی ہے یار، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس میں تو بس آج رمضان آ گیا، میں پکی توبہ کرتا ہوں، انشاءاللہ جس طرح اللہ کہے گا ویسے ہی بزنس کروں گا. نہ آپ کے بزنس کو روک رہا ہے، نہ کاروبار کو روک رہا ہے، نہ زندگی. بس وہ کہہ رہا ہے کہ میری مرضی کے مطابق چلو.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
بس جیسا نیٹ. اور تجھے اس چیز کا پتہ نہیں، کیا تو کسی اللہ والے کے پاس پوچھ لے، بیٹھ جائے اس کے پاس، توبہ کر کے تجھے بتاتا رہے گا.
سبحان اللہ،
سبحان اللہ.
تو انشاءاللہ نیت کریں، آپ فوراً سٹیپ اٹھائیں، اس طرف چلے جائیں. اللہ کی رحمت منتظر ہے، بہت جلدی رمضان چلا جائے گا، اس طرح زندگی ختم ہو جاتی ہے. انسان ذکر کرتے ہیں تھوڑا، انشاءاللہ دروشی پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المرسلین ذو الحوائج ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے کریم، تو ہمیں یہ رمضان بہترین رمضان بنا دے. یا اللہ، جس مقصد کے لیے ہمیں رمضان دیا میرے مولا، اس مقصد تک ہمیں آسانی سے پہنچا دے. اے میرے مولا، یہ رمضان ضائع ہونے سے بچا دے. یا اللہ، منزل ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ، مقصد ہمیں نصیب فرما دے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.